अभिमन्यु और इशिका एक साथ घर के लॉन एरिया में थे। वहां उनके अलावा और कोई नहीं था। अभिमन्यु और इशिका के बीच एक नोकझोंक के बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक किस हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी अचानक इशिका को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ और वो होश में आई। कुछ देर के लिए वो अभिमन्यु में खो गई थी। इशिका ने तुरंत अभिमन्यु को खुद से दूर किया और नीचे देखा तो उसका पेट डॉग म्याऊं उसके पैर पर आकर बैठ गया था। इशिका ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर अभिमन्यु की तरफ। उसके गाल लाल हो गए थे। अभिमन्यु से नजरें मिलते ही इशिका जल्दी से दौड़ते हुए वहां से घर में चली गई। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने हल्के से अपने होठों को छुआ और फिर म्याऊं को गोद में उठाकर उसके कान में धीरे से कहा, किसी को बताना मत, ये कुछ ज्यादा ही शाये है। अभिमन्यु म्याऊं को पकड़े हुए घर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा इशिका दरवाजे पर खड़ी कन्फ्यूजन से सामने की तरफ देख रही थी। वो उस घर में ज्यादा नहीं आई थी इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन सा कमरा उनका है। अभिमन्यु उसके पास आया और इशिका का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने जल्दी से अपना हाथ अलग कर लिया था क्योंकि सामने से एक हाउस हेल्पर आ रहा था। हाउस हेल्पर ने इशिका से कहा, मैडम आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, वो गेस्ट रूम में रखा हुआ है। इशिका कन्फ्यूज हो गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था क्योंकि उसने इशिका के लिए कुछ नहीं भेजा था। चलकर देखते हैं, अभिमन्यु ने कहा और फिर इशिका को लेकर गेस्ट रूम में पहुंचा। वहां एक कोने में जैसे किसी ने पिंक रोजेस का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया हो, वहां एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था जिसमें हजार के करीब पिंक रोजेस थे। इशिका ने आगे बढ़कर बुके के अंदर रखा हुआ कार्ड उठाया तो उसमें मिस्टर सिंघानिया का नाम लिखा हुआ था। अचानक उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने रेस्टोरेंट में उस अनजान आदमी को पिंक फ्लावर्स भेजने की सलाह दी थी। तभी अभिमन्यु उसके पास आया और बोला, क्या ये फूल उसी ने भेजे हैं जिसका कीमती सामान तुम्हें लौटाना था? इशिका को ये सब कुछ काफी फनी लगा। अभिमन्यु जाहिर नहीं कर रहा था लेकिन उसे जलन हो रही थी। इशिका ने बिना कुछ बोले कार्ड उसके आगे कर दिया था। कार्ड पर केशव सिंघानिया का नाम देखकर अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, मिस्टर सिंघानिया तुम्हें क्यों बुके भेज रहे हैं? इशिका भी सोच में पड़ गई थी, आखिर केशव सिंघानिया ने उसे फूल क्यों भेजे होंगे? क्या किसी को मनाने के लिए फूल भेजना काफी कैशुअल है, लेकिन केशव सिंघानिया उसे क्यों मनाएंगे? इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अभिमन्यु ने हाउस हेल्पर को बुलाकर कहा, एक काम कीजिए, इन फ्लावर्स को वाज में सजा दीजिएगा। हाउस हेल्पर फूलों को हटाने लगा। इस बीच अभिमन्यु ने इशिका से कहा, मेरा रूम ऊपर है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और वो अभिमन्यु के साथ थर्ड फ्लोर पर आई। ये वो कमरा नहीं था जो अभिमन्यु का होना चाहिए था। हेड ऑफ द कंपनी और हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते उसका कमरा बहुत बड़ा और अलग था, लेकिन इस वक्त उस कमरे में नकुल और उर्वशी रहते थे। कमरे में आने के बाद इशिका ने चारों तरफ रूम को देखा। वो एक डिसेंट सा रूम था जिसका इंटीरियर स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का था। वहां सिर्फ एक ही बेड था, जिसे देखने के बाद इशिका ने अभिमन्यु से कहा, तुम कहां सोने वाले हो? अभिमन्यु ने बिना कुछ बोले बेड की तरफ इशारा कर दिया था। इशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम लोग अभी इतने भी क्लोज नहीं हैं कि एक साथ एक बिस्तर शेयर करें। रियली? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। तो इशिका को याद आया कि थोड़ी देर पहले ही उनके बीच एक किस हुआ था। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इशिका ने सिर हिलाया और बेड पर चली गई थी। थकने की वजह से कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी, जबकि अभिमन्यु अभी भी सोफे पर करवट बदल रहा था। अचानक उसकी नजर इशिका पर गई जो सो चुकी थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर मायूसी से कहा, अजीब बात है, दोनों के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और प्यार भी, फिर भी अभी तक दोनों एक दूसरे से दूर हैं। अभिमन्यु को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी। अगली सुबह इशिका की आंख खुली तो उसने देखा अभिमन्यु सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में लगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। इशिका समझ गई थी कि अभिमन्यु को पूरी रात नींद नहीं आई है। वो बोली, शायद काउच अनकंफर्टेबल है, ऐसा करो तुम आज रात बेड पर सो जाना। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और फिर बाथरूम में चला गया था। उन दोनों ने तैयार होने के बाद वसुधा से मिलने जाने का सोचा। अभिमन्यु जब बाथरूम में था तो इशिका को रेहान स्मिथ का मैसेज मिला। रेहान ने मैसेज में लिखा था, डॉक्टर अनामिका, हमने दवाइयों को चुराने का मामला सुलझा लिया है। इशिका अभिमन्यु के लिए परेशान थी। उसने वसुधा को नायरा के भरोसे छोड़ दिया था क्योंकि वो दवाइयों का इंतजाम नहीं कर पाया था। हालांकि वो उनके लिए बहुत परेशान था। अभिमन्यु को नींद नहीं आ रही थी तो वो बार बार रात को वसुधा के कमरे में उसे फुटेज में चेक कर रहा था। जब वो दवाइयां मैंने बनाई हैं तो फिर नायरा बेवजह बीच में क्रेडिट क्यों ले रही है? अभिमन्यु को दवाइयों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हम दादी के लिए अरेंज करवा देंगे, इशिका ने अपने मन में कहा और फिर रेहान को मैसेज में लिखा, ऐसा करो वो मेडिसिंस लेकर राजवंश हाउस पहुंच जाओ। ठीक है, रेहान ने जवाब दिया। इशिका ने नायरा का पर्दाफाश करने का मन बना लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ वसुधा के विला के लिविंग एरिया में नायरा नकुल के पास बैठी हुई थी। नकुल ने नायरा से पूछा, बात कुछ आगे बढ़ी, क्या दादी शेयर्स देने के लिए तैयार है? वो काफी तेज है, जब भी मैं उनसे शेयर्स की बात करती हूँ तो ऐसे दिखावा करती है जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है, उनसे डील कर पाना आसान नहीं होने वाला, नायरा ने कड़वाहट से कहा। नकुल के चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। उसने कहा, मुझे पता था दादी ऐसा ही करेगी, उन्हें हमेशा से अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही प्यारा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही इंतजाम कर लिए हैं, जिंदल फैमिली में तुम एक अच्छी पोजीशन के साथ जाओगी। थैंक यू सो मच पापा, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। फिर नकुल ने कुछ भी आगे कहने से पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा है। आसपास कोई नजर न आने पर नकुल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने देखा तुमने दादी के कीमती गहने चुरा लिए हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, असली माल तो उस तिजोरी में है, मैंने उसे भी हटाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। क्या आप जानते हैं उसका पासवर्ड क्या है? नायरा ने धीरे से पूछा। अभिमन्यु की डेट ऑफ बर्थ ट्राई करो, नकुल बोला। वो जानता था कि वसुधा सबसे ज्यादा अभिमन्यु से प्यार करती है, वो दुनिया में किसी को भी भूल जाए लेकिन अभिमन्यु और उससे जुड़ी चीजों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। नायरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और जल्दी से कमरे के अंदर चली आई। वसुधा उस वक्त सो रही थी, वो सेफ के पास गई। उसने अभिमन्यु की डेट ऑफ बर्थ को सेफ के पासवर्ड में डाला लेकिन वो गलत बता रहा था। नायरा ने थोड़ी देर सोचकर डेट ऑफ बर्थ को उल्टा करके डाला तो सेफ खुल गई थी। नायरा ने देखा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, वो जल्दी जल्दी उन्हें पलटकर देखने लगी। तब उसे समझ में आया कि राजवंश फैमिली कितनी अमीर थी। इससे पहले कि नायरा उन पेपर्स को अपने बैग में डालती, उसे कुत्ते के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। म्याऊं दौड़ता हुआ उसके पास आया और नायरा के हाथ को अपने दांतों में कसकर पकड़ लिया था। हालांकि वो उम्र में सिर्फ 4 या 5 महीने का था लेकिन फिर भी उसने नायरा को रोक लिया था। नायरा दर्द के मारे जोर से चिल्लाई तो निवेदिता दौड़ती हुई आई। उसने तिजोरी खुली देखी तो वो चिल्लाकर बोली, मिस राजवंश आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दादी के कमरे की तिजोरी खुली है, इसका मतलब आप क्या यहाँ चोरी करने की कोशिश कर रही थी?
तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये कुत्ता मुझे छोड़ नहीं रहा है? नायरा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। इस बीच नकुल नायरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आ गया था। उसे वसुधा की छड़ी दिखाई दी तो उसने जल्दी से छड़ी उठाई और म्याऊं को उससे पीटने लगा। छड़ी की मार सहने के बावजूद म्याऊं ने नायरा का हाथ नहीं छोड़ा था, उसे बचाने के लिए निवेदिता को ही आगे आना पड़ा। नकुल ने म्याऊं को मारते हुए नायरा से अलग कर दिया था। निवेदिता उसे बचाते हुए बोली, प्लीज सर रुक जाइए, ये पपी इशिका मैम का है, दादी ने उन्हें गिफ्ट किया था, इसके काटने से कोई नुकसान नहीं होगा, प्लीज आप इसे इस तरह मत मारिए। उसे बचाने के लिए निवेदिता उसे लेकर कमरे के बाहर आ गई थी लेकिन नकुल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे गुस्सा पपी से ज्यादा इशिका पर था जिसने कल उस पर हाथ उठाया था। नकुल इशिका का बदला म्याऊं से ले रहा था। वो जोर से बोला, मैंने कहा इसे अभी छोड़ दो, आज मैं इसकी जान ले लूंगा, ये कुत्ता आवारा हो गया है और अपने ही घर के मालिकों को काटने लगा है, आज तो मैं इसकी जान लेकर छोड़ूंगा। नायरा ने जल्दी से सेफ के पेपर्स को रखकर उसे वापस बंद कर दिया था और बाहर आ गई। इतना शोर होने के बाद कोई भी वहां आ सकता था, ऐसे में उसके पकड़े जाने का डर था। वहीं अभिमन्यु वहां की फुटेज देख रहा था, उसने म्याऊं को इस तरह पीटते हुए देखा तो वो जल्दी से दौड़कर वहां आया, उसके साथ इशिका भी थी। इशिका ने म्याऊं को उठाया तो देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा था। इशिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने नकुल की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाकर कहा, जानवर ये है लेकिन जानवरों जैसी हरकतें तुम्हारी हैं, ये नायरा को काटने की कोशिश कर रहा था, मैंने बस इसे इसकी सजा दी है, नकुल ने सफाई दी। ये बिना वजह किसी को नहीं काटता है, जरूर इसने कुछ ऐसा वैसा देखा होगा तभी ये गया होगा, इशिका ने जवाब दिया। तभी निवेदिता आगे आकर बोली, दादी के कमरे की तिजोरी खुली थी, नायरा मैडम पेपर चेक कर रही थी, बस इसीलिए पपी आगे गया था। पूरी बात सुनने के बाद तो इशिका का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो नकुल की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोली, हाँ तो ये कहो ना कि अपनी बेटी के काले कारनामे छुपाने के लिए इस मासूम की जान लेना चाहते थे तुम, अपना मुंह बंद रखो वरना इस जानवर के साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दिया जाएगा, नकुल ने गुस्से में जवाब दिया। अभिमन्यु को सब बर्दाश्त था लेकिन कोई इशिका के साथ बदतमीजी से बात करे ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। वो नकुल के पास गया और उसका गला पकड़कर उसकी आंखों में देखकर सख्ती से बोला, मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बोलने के लायक ही ना छोड़ू मैं तुम्हें। अभिमन्यु नकुल का गला पकड़कर खड़ा था। तभी इस बीच प्रशांत वहां किसी के साथ दाखिल हुआ। उसके साथ लगभग 80 साल का बुजुर्ग आदमी था जो प्रशांत का चाचा लगता था। नकुल को छटपटाते हुए देखकर प्रशांत ने कहा, देखा चाचा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा है, बचपन जितना ही जिद्दी और घमंडी है, अब देखो कैसे अपने बड़े भाई को मार रहा है। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे, बुजुर्ग आदमी ने सख्त आवाज में कहा।
वो वसुधा जी का देवर था जिसका नाम दिग्विजय राजवंश था। अभिमन्यु ने उन्हें देखकर सर झुकाया और कहा, ये बेवजह इस पपी को मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो तुम एक कुत्ते के लिए मेरे बेटे पर हाथ उठाओगे? तुम्हारी पत्नी भी उतनी ही बदतमीज है जितने की तुम, प्रशांत ने तेज आवाज में कहा। राजवंश फैमिली के आपसी रिश्ते कैसे थे ये दिग्विजय से छुपा हुआ नहीं था। आखिर उन्होंने ही वसुधा के साथ मिलकर अभिमन्यु को दूर भेजा था। उन्होंने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, आजकल लोग कुत्ते को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, तुम्हें भी कुत्ते के ऊपर सख्ती नहीं दिखानी चाहिए थी। ये एक छोटा सा जानवर ही है, यहाँ मेरी भाभी बीमार है और तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। दिग्विजय के बीच में दखल देते ही वो मैटर वहीं पर खत्म हो गया था। नकुल ने एक नज़र नायरा की तरफ देखा जिसने आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का इशारा किया, वरना इस वक्त अगर इशिका अंदर जाती और खुली तिजोरी देखती तो सच में उन पर सवाल खड़े होने लगते। उस मामले में प्रशांत आगे कुछ बोलता उससे पहले दिग्विजय ने अभिमन्यु से कहा, मैं पार्टी में आ नहीं पाया था, अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे मुझे? अभिमन्यु ने सिर हिलाया और इशिका को अपने पास आने का इशारा किया। अभिमन्यु ने इशिका का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, छोटे दादू ये इशिका है। इशिका ने उनकी तरफ सिर झुकाया जिस पर वे हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। उसके बाद अभिमन्यु ने तुरंत निवेदिता के साथ मियाओ को डॉक्टर के पास भेज दिया था। इशिका जाओ जाकर देख लो कि दादी सो रही हैं या नहीं, आखिर दादू उनसे ही मिलने के लिए आए हैं, अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा। इशिका अंदर गई तो उसने देखा वसुधा धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। इशिका को देखते ही वसुधा के दिमाग की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तुम आ गई, जल्दी मेरे पास आओ। इशिका उनके पास गई तो वसुधा ने कहा, तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि तुम्हारी उस लड़के के साथ शादी कैसे हुई, मुझे सब याद आ गया है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इशिका जल्दी से वसुधा के पास आकर बैठ गई थी, आखिर वो भी इस सच को कब से जानना चाहती थी।